मैं कुछ दिन के लिए उज्जैन में नहीं था, यद्यपि मैं यहां नहीं था बल्कि मेरा मन यहां पर ही था। और यहां जो योजना हम लिए हैं और जिसका स्थापना हम कर रहे हैं, उसमें आप सब धीरे धीरे युक्त हो रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है, बहुत मन में बहुत प्रसन्नता आते हैं जब मैं देखता हूँ कि आप लोग सब नज़दीक आ रहे हैं हमारे। हम चाहते हैं कि आप सब हमारे पास साथ आए, हमारे साथ हमारी ये योजना में, हमारी ये कार्य में युक्त होकर हमारे साथ आए, क्योंकि हमारा उद्देश्य यही है। हम उज्जैन में क्यों आए हैं, यहाँ आने का उद्देश्य था कि उज्जैन वासी के लिए हम यहाँ भगवान के वाणी का प्रचार करेंगे और इसके द्वारा हम आपको भगवान के पास, भगवान को नज़दीक जाने का कुछ सुजोग दे सकते हैं और भगवान के नज़दीक आने में सहयोग दे सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल यही है। और जब हम देखते हैं कि आप लोग आ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे मन में प्रसन्नता आती है और हम चाहते हैं कि आप सब भगवान के भक्त बने, भगवान के बहुत अच्छे भक्त बने, भगवान के शुद्ध भक्त बने, क्योंकि भगवान को भक्ति करने से ही जीवन का सफलता आती है। जब हम भगवान के साथ संपर्क युक्त रहते हैं तो हमारा जीवन स्वाभाविक रूप में ही आनंदमय होता है, और जब हम भगवान से दूर चले जाते हैं तो हमारा जीवन कष्ट से भर जाता है। ओके, आई कैन ट्रांसलेट इन हिंदी व्हाट आई सेड इन ब्रीफ, और यू आर गोइंग टू ट्रांसलेट जमुना प्रिया, सो यू आर ट्रांसलेटिंग, या ओके, or maybe I can say it in English also, partly in, sometimes in Hindi, sometimes in English. I was telling that for about 3 weeks I was away from Ujjain. Although I was away from Ujjain, but my mind was in Ujjain, because so much is happening here. We are trying to do so many things, all these projects that we have. I mean, I was most of the time I was thinking about that. So although physically I was away, but mentally I was in Ujjain. So naturally I feel very happy to be back here in Ujjain. And it gives me great pleasure. It gives me deep satisfaction to my heart when I see that so many of you are coming forward to accept Krishna consciousness. Some of you are from here, some of you are local, and some of you have come from other parts of this world, away from here. And it gives us great pleasure because that is our objective. We simply want to distribute Krishna consciousness. The purpose of our coming here, building the temple and whatever projects that we are undertaking, the main objective is to offer Krishna consciousness, provide the facility so that everyone can become devotees of Krishna. Why? Because the main objective of our existence is to become a devotee of Krishna. We want to be happy and we don't want to suffer. Isn't that what everybody wants? Everybody wants to be happy, everybody wants to enjoy, and nobody wants to suffer. Now, what is the real way to enjoy? The real way, the real means of enjoyment is to be connected to Krishna. And so, when we become isolated from Krishna, when we become separated from Krishna, then we suffer. So the real cause of suffering is our separation from Krishna. And the real means of enjoyment is by being connected to Krishna. It's a very, very simple fact. People may not accept it or understand it, but in reality, when we practice this process, we see that how our connection to Krishna makes us happy and our isolation from Krishna makes us suffer. And in simple words, I can also explain how is because when we become isolated from Krishna, then we begin to identify this body to be ourselves. When we become separated from Krishna, then we think that this body is ourselves. And what is this body? This body is a beautiful machine to receive pain. This body is a wonderful instrument to receive pain. So when you identify yourself with this body, all you get is pain. But when you become connected to Krishna, then we realize that we are not this body, but we are spirit soul. And our enjoyment, our real enjoyment is spiritual, and that enjoyment is derived by being connected to Krishna. So we have come here to remind you of this simple fact. Our main purpose is simply to give you this simple understanding. Become connected to Krishna. By becoming situated in your spiritual identity, and you will see how you are joyful. And when you forget Krishna and you identify yourself with the body, then how you suffer. It's a simple fact that we are presenting. And when you accept it, then you see the result. So how many of you have seen the result? Please raise your hand. Okay. Oh, Jamuna Priya raised both her hands. Now let us hear Jamuna Priya. Give us your realization. Give us your realization. Yes. What did you benefit? What happened since you became a devotee of Krishna?
Maharaj, it gave me a better perspective of whatever I was going through in life, why I was going through that. It gave me a better perspective, and it's changed my outlook to life, which is meant that even if I was looking at the same thing from one angle, it was giving me a lot of pain. But now that I've been in Krishna consciousness, I can see, number one, that I'm not the controller, and number two, that I do have to go through suffering due to my past karma, and therefore it's given me the opportunity to surrender more to Krishna, because I've understood the purpose of life, and therefore having that mood, the same thing doesn't feel the same as it used to.
Very good. Yeah. And now, I'll just make a few other points here. Yeah, go ahead.
There's one more point, somewhere I just strongly feel is now, I used to wonder, you know, what the purpose of my life really is when I was 16. And now I really feel that I know what the purpose of my life is, to become the servant of Krishna by serving his devotees. So that, for me, has filled the gap in my life.
Yeah, and did you realize that you're not your body?
I have an opportunity to keep reminding myself this, yes, that yeah. I'm not the body. I can't stay with my hand and my heart.
And did you realize that through the body there is no enjoyment?
Yes, completely.
There may be some transient, fleeting sense of enjoyment through the body, but the real enjoyment is not in the basis of the body. The real enjoyment is derived out of our spiritual relationship with Krishna, loving relationship with Krishna. Very good. Thank you. Now I know why you raised both the hands. So, main jo bol raha tha ki हम जब भगवान से दूर चले जाते हैं तो हमें कष्ट का अनुभूति होता है, हमें कष्ट मिलता है, और जब हम भगवान के साथ युक्त रहते हैं तब हमें आनंद प्राप्ति होता है, आनंद का उपलब्धि होता है। ये कैसे होता है, क्यों होता है? क्योंकि जब हम भगवान से दूर चले जाते हैं, भगवान से बिछोड़ जाते हैं, तब हम हमारे ये शरीर को हमारा स्वरूप समझते हैं। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तब हम ये शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं। और ये शरीर असल में क्या है? ये शरीर कष्ट भोगने का एक बहुत बढ़िया यंत्र है। ये शरीर के द्वारा कष्ट का उपलब्धि होता है। ये शरीर कष्ट पाने के लिए ही है। तो मतलब जब हम अपना स्वरूप को, असल स्वरूप को, आध्यात्मिक स्वरूप को भूलकर जब हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं तब हमें कष्ट मिलता है। यह शरीर के द्वारा जब हम सुख प्राप्ति के प्रयास करते हैं तब हमें कष्ट ही केवल मिलता है, क्योंकि यह शरीर कष्ट भोगने का एक बहुत बढ़िया यंत्र है। कैसे, आइए हम थोड़ा विचार करते हैं उसका। हम एक शरीर का कोई भी अंग को बारे में सोचें। आप सोचिए कोई शरीर का एक मामूली क्षुद्र अंग, जैसे ये मेरा अंगली। आप अंगली के ओर देखिए, ये छोटा सा अंगली के ओर देखिए, देखे हैं? अच्छा, आप सोचिए आप इस अंगली को कितना कितना रूप कितना तरीका से कष्ट दे सकते हैं। कितने प्रकार से आप ये अंगली को कष्ट, या इसको इसको कष्ट दे सकते हैं? तुम बताओ।
इसको काट सकते हैं।
अच्छा, बहुत अच्छा। ये अंगली को काट सकते हैं, तो अंगली को काटने से क्या होगा? कष्ट होगा। हाँ, और दो चार उपाय बता।
सुई बता सकते हैं।
हाँ, सुई से दबा सकते, सुई फटा सकते हैं। हाँ,
इसको पत्थर के नीचे।
वाह। तो कितने उपाय से हम ये शरीर को, ये अंगली को, अंगली पर कष्ट डाल सकते हैं? आप सोचिए कितने उपाय से आप ये अंगली को आराम दे सकते हैं। कितने उपाय से है, कोई उपाय? हाँ, तो ये जो विचार है, ये हम हमारे शरीर का हर अंग प्रत्यंग में प्रयोग कर सकते हैं, है ना। कोई भी अंग आप लीजिए, उसको आप हजारों तरीका से उस पर कष्ट डाल सकते हैं, यंत्रणा दे सकते हैं, परंतु सुख या आराम थोड़ा बहुत दे सकते हैं, बल्कि वो एकदम बेकार है। तो आप सोचिए ये शरीर क्या है? हाँ, ये शरीर कष्ट आने के लिए एक बहुत बढ़िया यंत्र है। हाँ, ये शरीर से, शरीर, ये शरीर के द्वारा हम बहुत सारे उपाय से कष्ट प्राप्त हो सकते हैं। हाँ, तो ये है शरीर। तो जब हम अपना शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, तो हम केवल कष्ट को ही निमंत्रण करते हैं। और जब हम भगवान के साथ संपर्क जोड़ लेते हैं, तब हमें पता चल जाता है, पता लग जाता है, हमें पता चलता है कि हम ये शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं जो भगवान का एक अंश है। और शरीर का जो धर्म है, आत्मा का धर्म, उससे बिल्कुल विपरीत है। जैसे शरीर नाशवान है, आत्मा अविनाशी है। शरीर को काट सकते हैं, जला सकते हैं, भिगा सकते हैं, परंतु आत्मा को, शरीर को काटने से भी आत्मा को नहीं काटा जाता है, शरीर को जलाने से भी आत्मा को नहीं जलाया जाता है। और ये शरीर नाशवान है, शरीर का मृत्यु होता है, परंतु आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता है, आत्मा अमर है। तो ये आत्मा जो है, ये आत्मा नित्य है, मतलब आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, विनाश नहीं होता है। आत्मा में पूर्ण चेतना है, पूर्ण ज्ञान है, और आत्मा आनंदमय है। परंतु आत्मा का ये जो गुण अमृतत्व या नित्यत्व, चेतना और आनंद का, जो ये आनंद प्राप्ति का जो गुण है, ये तभी संभव होता है जब आत्मा भगवान के साथ युक्त रहता है। जब आत्मा भगवान से अलग हो जाता है, तो आत्मा अपना ये गुण को खो बैठते हैं। असल में आत्मा भगवान की तरह सच्चिदानंदमय है। सत का मतलब जिसका कभी विनाश नहीं होता है, चित का मतलब पूर्ण ज्ञान और आनंदमय। ये आत्मा का स्वाभाविक गुण है या स्थिति है। परंतु जब हम अपना शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, तब इस गुण हम खो बैठते हैं। आत्मा ये गुण खो बैठते हैं, क्योंकि ये गुण तो आत्मा का है, शरीर का नहीं। तो जब हम शरीर को अपना स्वरूप समझते हैं, तो शरीर का जो गुण है उसको ही हम ग्रहण कर लेते हैं। मतलब तब हम सोचते हैं कि ये शरीर नाशवान है, क्योंकि ये शरीर नाशवान है, मैं भी नाशवान हूं। क्योंकि शरीर अज्ञान है, मैं भी अज्ञान हूं। क्योंकि ये शरीर के माध्यम केवल यंत्रणा ही मिलता है, कष्ट ही मिलता है, तो मैं, मुझे कष्ट मिल रहा है। तो हम अगर इस कष्टमय जो स्थिति है उससे हम उद्धार प्राप्त होना चाहते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, किसको पता है? आप हाथ उठाइए। ओके ओके, तुम बताओ।
कृष्णा की सेवा करनी,
कैसे करना है?
भगवान की सेवा करके और
ओके। हाँ, तुम भी वही प्रश्न का जवाब दे, बहुत अच्छा। भगवान को, भगवान के साथ युक्त रहने से हम भगवान का जो गुण है वो गुण भी प्राप्त होते हैं। भगवान सच्चिदानंदमय है, हम जब भगवान के साथ युक्त रहते हैं तब हम भी सच्चिदानंद जैसे बन जाते हैं। इसका दृष्टांत ऐसे है, एक सुंदर दृष्टांत ऐसे हो सकता है हम दे सकते हैं, जैसे कि एक चिंगार। चिंगार जब आग में रहता है तो वो आग है ना? चिंगार आग है, पर चिंगार जब आग से निकलकर भस्म में गिरता है तो वो क्या होता है? आग रहता है तो खाक बन जाता है ना? तो ऐसे ही जब हम भगवान के साथ युक्त रहते हैं तो भगवान का गुण हम में विराजमान रहता है, जब हम भगवान से अलग हो जाते हैं तो गुण हम खो बैठते हैं। खोकर जैसे चिंगार जब खाक में गिरता है तो वो भी खाक बन जाता है, तो वैसे ही हम भी जड़ भौतिक जगत में जब हम गिर जाते हैं तो ये भौतिक जगत का गुण हम ग्रहण कर लेते हैं। तो आप सोचिए, चिंगार अग्नि से बाहर निकलने के कारण उसका जो अग्नि का जो गुण था वो खो बैठा, तो उस चिंगार को फिर आप आग में डाल देते हैं तो क्या होगा? वापस फिर वो आग का गुण ग्रहण कर लेंगे। तो अब बताइए, भगवान से बिछोड़ जाने से आपका क्या हुआ? हाँ, सत्यनाश हुआ है। हाँ, सत्यनाश हो गए हैं जरूर। भगवान को, भगवान से बिछोड़ जाने से जो आत्मिक गुण जो है वो हम खो बैठे हैं। तो अब अगर हम भगवान के साथ युक्त हो सकते हैं तो जो आध्यात्मिक गुण जो है वो हमारे फिर वापस आ जाएगा। मतलब सच्चिदानंद जो स्थिति है वो हम प्राप्त हो जाएंगे। तो अब प्रश्न है, भगवान के साथ हम कैसे युक्त हो सकते हैं? भगवान के साथ युक्त होने का तरीका क्या है? किसको मालूम है भगवान के साथ युक्त होने का तरीका कैसा है? ओके, कृष्णचंद, यू रेज द फर्स्ट हैंड। ओके, कृष्णाचंद बोला भगवान के साथ युक्त होने का तरीका है भक्ति। तो भक्ति का मतलब क्या है? यस प्रीता, हाँ, भक्ति का मतलब है सेवा। अच्छा, सेवा का मतलब क्या है? सेवा का मतलब है कुछ करना, है ना? कुछ करना, किसी के लिए कुछ करना जो वो चाहते हैं, जिससे उसका सुख विधान होता है, संतुष्टि विधान होता है। तो किसी को संतुष्टि विधान क्यों हम करना चाहते हैं? हाँ, यस, हाँ, चिरंजीव ने बताया कि प्यार। प्यार क्या है? प्यार का मतलब क्या है अब बताओ चिरंजीव जी।
लव फॉर कृष्णा।
प्यार का मतलब क्या है? प्यार क्या है? हाँ, अट्रैक्शन। ओके, और कृष्ण
के बीच में जो
संबंध, किसी के बीच में जो मधुर संबंध है, माता जी, आत्मीय संबंध, बहुत अच्छा। और तुम बताओ, तुम भी तो हाथ उठाया था।
उनका गुण रूप लीला का स्मरण करके भी भगवान से जुड़ा जा सकता है।
अच्छा, भगवान के गुण लीला वगैरह शरण स्मरण करके भगवान के साथ युक्त होंगे। हाँ, परंतु प्यार का मतलब क्या है? अच्छा, हाँ, प्यार का मतलब है, प्यार है एक शक्ति, प्यार एक शक्ति है। जैसे रोशनी एक शक्ति है, रोशनी किससे निकलता है? आग से निकलता है, या फिलामेंट से, दिया से रोशनी निकलता है। वैसे ही हमारा हृदय से एक शक्ति निकल रहा है, हमारे हृदय में एक शक्ति है, वो शक्ति का नाम है प्यार। ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका दिल में प्यार नहीं है? ऐसा दिल है जिसमें प्यार नहीं है? वो ढका रह सकता है, परंतु हर दिल में प्यार है। तो ये शक्ति क्या है? ये शक्ति ऐसा एक शक्ति है जो एक दूसरे को दूसरे के पास नजदीक लाता है। जो दो व्यक्ति के बीच में जब प्यार होता है तो क्या होता है, वो नजदीक आते हैं। और दो व्यक्ति के बीच में अगर प्यार का विपरीत भाव क्या है, नफरत या द्वेष, ये नफरत उर्दू शब्द है, द्वेष, द्वेष होने से क्या होता है, ठीक है, नफरत, नफरत से क्या होता है, एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो नफरत से, नफरत के कारण एक दूसरे से अलग हो जाता है। तो अब बताइए प्यार से क्या होता है? अच्छा, एक दूसरे के नजदीक आते हैं। तो ये प्यार जो है हमारे दिल में, ये प्यार ऐसी एक शक्ति है जिसका उद्देश्य है भगवान के साथ युक्त होना। जोड़ते हैं प्यार के द्वारा, और भगवान के साथ हम युक्त होते हैं जब भगवान के साथ हमारा प्यार की संपर्क, मतलब ये शक्ति, प्रेम जो है, प्यार जो है, ये हमको कहां अर्पण करना चाहिए? भगवान से अर्पण। और भगवान को अर्पण करने से क्या होता है, हमारा हृदय, हम भगवान से युक्त होते हैं, और भगवान से युक्त होने से चिंगार फिर आग में चले जाने से वो भी आग बन जाता है। ओके, सो नाउ वी विल एंड।